آئیے میں گزارش گزاروں ہوں، اس وقت بھی الحمدللہ شبداری جلوس آئے رضا میں سب جگہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان کرنے کے لیے اپنے سلیقے سے اور بے باک خطابت کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں جناب شبیر علی آزاد وارسی صاحب سے، وہ تشریف لا رہے ہیں، آپ مومنین سے گزارش ہے کہ انہیں حوصلہ دیں اور ایسے ہی یہ حق زہرا سلام اللہ علیہا اہل بیت طہر علیہ السلام یہ بیان کرتے رہیں، کربلا والوں کا ذکر کرتے رہیں۔ آپ مومنین سے گزارش ہے بلند ترین نعرہ صلوات اور نعرے حیدری سے استقبال کریں۔
ممبر بیچ میں کر لیا جائے، ممبر تھوڑا سا بیچ میں کر لیا
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق، الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين شفيع المذنبين إمام الحرمين والقبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعبة وقوسين جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین و اصحاب المتقین المنتخبین المنتجبین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقط قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد والے محمد پر۔ مولانا سید علی رضا صاحب قبلہ جو کہ میرے استاد کی حیثیت رکھتے ہیں، میں نے ان کے علمی صحبت میں کافی استفادہ کیا ہے اپنے شہر میں، میں گزارش کروں گا کہ آپ قبلہ تشریف لے آئیں، یہ میرے لیے شرف کا مقام ہے کہ آپ کے سامنے میں گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر و عزیزان محترم و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے کہ ایسے دوپہر میں اور ایسے عجیب و غریب و شدید موسم میں بھی، ایسے مزاج بدلتے ہوئے موسم میں بھی آپ لوگوں کا ایسے کثیر مجمع کے تحت فرش عزائے حسینی پہ آ کے بیٹھنا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ مزاج موسموں کے بدلتے ہیں، عقیدوں کے نہیں بدلتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرے سامنے یہ حسینیوں کا مجمع ہے اور میرا بھی بچپن سے مزاج رہا ہے اعظم گڑھ والوں کہ میں تقریر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں، ہرمولائیوں کے بیچ نہیں کرتا۔ ماشاءاللہ، یہ حسینیوں کا مجمع ہے اور میں کبھی نہیں کہتا باہر جو لوگ کھڑے ہیں وہ اندر چلے آئے، اس لیے کہ اندر ہر کوئی آ بھی نہیں سکتا۔ وجہ یہ ہے قبلہ کہ در والے در والے رہتے ہیں، گھر والے گھر والے رہتے ہیں۔ میں کبھی باہر والوں کو نہیں کہتا کہ فرش ادا پہ آ کر بیٹھ جاؤ، وجہ یہ ہے کہ فرشتے رحمتیں لے کر کے ان کے گھر نہیں آئے۔ دیکھو یہ مائک والا ڈنڈی مار رہا ہے، یہ لوگ سوچتے ہیں ہر مولوی بے وقوف ہوتا ہے، میں آواز بڑھا رہا ہوں یہ گھٹا رہا ہے۔ میں میری جان ایک آواز کر کے چھوڑ دو، اس لیے کہ میری تقریر سے کسی کا باکس نہیں پھٹتا، فقط منافقوں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ ہاں، اور یہ حسینیوں کا مجمع ہے، فرشتے رحمتیں لے کر کے ان کے گھر نہیں آئے کہ جن کی آنکھوں میں اشک غم سرور نہیں آئے۔ میں کبھی نہیں کہتا باہر والوں اندر چلے آؤ، فرشتے رحمتیں لے کر کے ان کے گھر نہیں آئے کہ جن کی آنکھوں میں اشک غم سرور نہیں آئے، اور نہیں لکھا تھا تقدیروں میں جن کے خلد میں جانا عزا خانوں سے گزرے وہ مگر اندر۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، ہمیں زیادہ دیر مجھے نہیں بولنا ہے، بس 30 سے 35 منٹ، پر شرط یہ ہے کہ جب تک آپ بولتے رہیں گے تب تک میں بولتا رہوں گا۔ میرا مزاج ہے میں گنگوں کے بیچ تقریر نہیں کرتا، اس لیے کہ اس علی کا نام لیتا ہوں جس کا نام لینے کے بعد گنگوں کو بھی زبان مل جاتی ہے۔ ماشاءاللہ صاحبہ نے زبان مجمع بیٹھا ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اپنے بندوں سے خطاب کر کے، فذکرونی اذکرکم، دیکھو تم میرا ذکر کرو بدلے میں تمہارا ذکر کروں گا۔ توجہ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ کیا مطلب؟ اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو گے اپنی محدود قوتوں کے ساتھ، میں تمہارا ذکر کروں گا اپنی لامحدود طاقتوں کے ساتھ۔ جب تک تم رہو گے تم میرا ذکر کرو گے، جب تک میں رہوں گا میں تمہارا ذکر کروں گا۔ توجہ، آج یہ 1400 برس سے فتوے بعد ملا مفتی یہ سمجھتا ہے کہ آزاداری پر فتوے لگا کر، حسینیت پر فتوے لگا کر آزاداری ختم کر دیا جائے گا، آزاداروں پہ ظلم کر کے آزاداروں کو مار مار کر ختم کر دیا جائے گا آزاداری۔ مگر اس منافق کو پتا نہیں ہے وہ مارتے مارتے تھک گیا ہے، ہم مرتے مرتے نہیں تھکے ہیں۔ توجہ، وہ مارتے مارتے تھک گیا۔ ماشاءاللہ، سلامت رہو میری جان، تمہارے ماں پہ سلام ہو میرا، تمہاری ماں کی تربیت پہ سلام ہو میرا، تمہاری ماں کی شرافت پہ سلام ہو میرا، اس لیے کہ علی کا نعرہ فقط شریف ماؤں کی اولادیں لگاتی ہے۔ ماشاءاللہ، سوچتے ہیں اداداری مٹا دیں گے. اللہ کہہ رہا ہے فذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, تم میرا ذکر کرو گے اپنی محدود قوتوں کے ساتھ میں تمہارا ذکر کروں گا اپنی لامحدود طاقتوں کے ساتھ, تم جب تک رہو گے میرا ذکر کرو گے میں جب تک رہوں گا تمہارا ذکر کروں گا تمہارا ذکر کروں گا. اب عالم اسلام کے تمام مبلغین سے میرا سوال ہے کہ مجھے یہ بتا دو کہ 61 ہجری میں 10 محرم کی تاریخ میں عصر عاشور کو امام حسین نے کربلا کے میدان میں کیا کیا, کیا ذکر خدا کیا؟ کہا نہیں مولانا, حسین نے ذکر خدا کو بچایا. توجہ, ذکر خدا کرنا اور ہے ذکر خدا بچانا اور ہے. حسین نے کربلا میں عصر عاشور کو ذکر خدا کیا نہیں ہے, ذکر خدا کو بچایا. اور کیسا بچایا کہ آج 1400 برس ہو گئے مگر مسجدوں کی میناروں سے اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آوازیں آ رہی ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ کی صداؤں سے فضائیں گونج رہی ہے. تو بھائی یہ ذکر خدا بچایا کس نے؟ کہا حسین نے بچایا. میں نے کہا حسین جتنی بلندی کا ستارہ سہی مگر حسین ہے کون؟ کہا حسین ہے بندہ. توجہ کیجئے گا, حسین جتنا بلند سہی مگر حسین ہے بندہ. میں نے کہا ہوش کے ناخن لے مولوی, ارے حسین بندہ ہو کر قیامت تک ذکر خدا بچا سکتا ہے تو کیا خدا خدا ہو کر قیامت تک ذکر حسین نہیں بچا سکتا؟ حسین بندہ ہو کر قیامت تک ذکر خدا کو بچا سکتے ہیں تو کیا خدا خدا ہو کر قیامت تک ذکر حسین نہیں بچا سکتا؟ بھائی سبب یہی ہے کہ دنیا کی تمام تحریکیں حمایتوں کے باوجود ختم ہو گئی مگر حسین کی عزاداری کی تحریک مخالفتوں کے باوجود بڑھتی جا رہی ہے. تو پھر یہ ترقی دیکھ کر مان لینا کہ عزاداری کا بچانے والا ملا نہیں اللہ ہے. توجہ ہے, تیرے فتووں سے کیا ہوتا ہے؟ تیرے باپ دادا بنی امیہ کے ٹکڑوں پر پلنے والے نمک حرام کٹ ملا مر کر اپنے جہنم کی خاک بن گئے. حسین کا علم کل بھی اٹھتا تھا, حسین کا علم قیامت تک اٹھے گا. سلامت رہو میری جان. سب مل کر, سب مل کر ہے داری اب میں تو دعا کرتا ہوں کہ علی کا ذکر سن کر یا علی کا نعرہ سن کر جو بھی پریشان ہو رہا ہے اللہ اس کے پریشانی میں اور اضافہ فرمائے. قسم خدا کی جب علی کا ذکر ہوتا ہے تو میں غور کرتا ہوں کچھ منحوس چہرے اور منحوس ہو جاتے ہیں, کچھ جلے ہوئے چہروں پر اور جلنداری ہو جاتی ہے. ارے جل علی کے ناروں سے, علی کے نام پہ جلتا ہے تو یوں ہی سہی. قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا, قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا. خدا تو بعد میں دوزخ میں تجھ کو پھینکے گا, میں نام لے کے یہی پر تجھے جلا.
علی, علی, علی,
अली सब मिलकर अली जिंदा मैंने कहा मुफ्त के मुफ्ती तू रोकेगा जिक्र अली तेरी औकात क्या है 14 साल बचपने में गुजर गए 26 साल जवानी के गुजर गए 20 साल बुढ़ापे के गुजर गए 60 साल की उम्र में कब्र में पैर लटक गया तवज्जो मैंने कहा 14 साल का बचपना 26 साल की जवानी और 20 साल का बुढ़ापा लेकर उस अली को मिटाने चला है जो आदम से पहले भी था है? जो आदमियों के बाद भी रहेगा तवज्जो तू क्या सोचता है पाबंदी लगाकर हमारे हौसलों को रोकेगा फतवे देकर ताजिया कभी ताजिये पे फतवा दिया कभी आलम पे फतवा दिया कभी जुलूसों पे फतवा दिया कभी आजादारी पे फतवा दिया कभी काले लिबास पे फतवा दिया अच्छा अभी कुछ रोज पहले कबला मैं गुजरात में था जन्माष्टमी का जमाना था कृष्ण जी की मूर्ति निकली थी जब गणपति जी का जमाना आता है तो मुंबई और अतराफ में गणपति जी की मूर्ति निकलती है हमारे बंगाल में जब दुर्गा और काली जी का जमाना आता है तो हमारे बंगाल में दुर्गा और काली जी की मूर्ति निकलती है मौलाना मैं बचपन से जवान हो गया चेहरे पर आपने मेरे दाढ़ी आते देखा है आपके गोद में बैठा हुआ हूं मैं क़िबला आप गवाही दीजिए बचपन से जवान हो गया मैंने होश संभाल लिया मगर मैंने आज तक नहीं सुना कि कभी किसी मुफ्ती ने फतवा दिया हो कि कृष्ण की मूर्ति देखना हराम गणपति की मूर्ति देखना हराम दुर्गा और काली की मूर्ति देखने से निकाह टूट जाता है मगर जैसे ही मोहर्रम आता है यही मुफ्ती फतवा देता है कि ताजिया देखने से निकाह टूट जाता है मैंने कहा सोशल मीडिया वालों मैं तुम्हारा शुक्र गुजार हूँ कि तुमने आज सोशल मीडिया पे हर जगह का ताजिया दिखा दिया ये अजमेर का ताजिया ये कलियर का ताजिया ये खिजौटा का ताजिया ये दिल्ली का ताजिया ये यूपी का ताजिया ये एमपी का ताजिया अरे इतना ताजिया दिखाया कि सारी बली उमैया की औलादों का निकाह टूट गया माशाल्लाह जिंदाबाद बेटा या कहा नहीं ताजिया मत उठाइए क्यों नहीं उठाए मेरी जान का बिदअत है क्या है बिदअत का जो नबी के दौर में नहीं था वो बिदअत वो हराम तारीख पढ़िए फतवों की जब हवाई जहाज इजाद हुआ एरोप्लेन इजाद हुआ इसी मुफ्ती ने फतवा दिया एरोप्लेन पे सवारी करना हराम क्यों का इसलिए कि नबी ऊंट पे सवारी करते थे मोटर कार इजाद हुआ का मोटर कार पे बैठना हराम क्यों का नबी घोड़े पर बैठते थे घड़ी इजाद हुई, कहा ये घड़ी देखना हराम क्यों? कहा नबी के जमाने में सूरज से, सूरज की किरणों से टाइम वक्त देखा जाता था। तवज्जो, तो जो नबी के दौर में नहीं था हराम, हवाई जहाज नबी के दौर में नहीं था, घड़ी नबी के दौर में नहीं था, ताजिया नबी के दौर में नहीं था, सबीन नबी के दौर में नहीं था, तबरुक नबी के दौर में नहीं था, मैंने कहा तू भी तो नबी के दौर में नहीं था। माशाल्लाह, सब मिलकर तू भी तो नबी के दौर में नहीं था, तेरा बाप भी तो नबी के दौर में नहीं था, तो तू कैसे हलाल हो गया? कहा नहीं, आप ही बताइए ताजिया हलाल है या हराम? मैंने कहा दोनों है। तवज्जो कीजिएगा, अब आप भी सोचते होंगे अब तक तो ठीक पढ़ रहे थे, अचानक बहक कैसे गए? कहा नहीं, आप बताइए ताजिया हलाल है या हराम? मैंने कहा दोनों है, हलाल भी है हराम भी है। कहा दोनों कैसे हो सकता है? मैंने कहा सुन, हलाल ज़ादों के लिए हलाल है, हराम ज़ादों के लिए हराम। सब मिलकर असल में किस चीज से प्रॉब्लम है? कहा नहीं, आप खुद लकड़ी लगाते हैं, खुद कागज लगाते हैं, खुद पन्नी लगाते हैं और ताजिया बनाकर इमाम हुसैन से निस्बत दे देते हैं। मैंने कहा अच्छा ये बता, तेरे इलाके में जो मस्जिद बनी थी उसका ईटा लेकर क्या जिब्रील नाजिल हुए थे? मार्बल मिकाइल ने लगाया था, चूना कलई इसराफिल ने किया था और मस्जिद तूने अपने जेब से बनाई? अपना नजराना तो मौलवी अपने बाप को ना दे, अल्लाह की राह में क्या देगा? मैंने कहा तो मस्जिद कैसे बनाई? कहा ओपन चंदा किया। मैंने कहा अच्छा, जब मस्जिद के लिए चंदा किया तो चंदा देने वालों का अकाउंट चेक किया, किसका व्हाइट मनी किसका ब्लैक मनी, किसका हलाल का पैसा किसका हराम का पैसा? कहा नहीं, वहां चेकिंग नहीं चलती, वहां तो एक ही सिस्टम है, आओ कलंदर घुस जाओ अंदर। जो पैसा आया डब्बे में, मैंने कहा कोई हलाल हराम की तमीज नहीं, उसी पैसों से तूने मकान बनाया, अल्लाह से निस्बत दे दी जायज है। तो हम अगर अपने हलाल पैसों से ताजिया बनाकर करबला से निस्बत दे दे,
लब्बैक।
परेशान हो जाता है। असल में एक बात कहूंगा आजमगढ़ वालों, अगर कसम खुदा की अगर ताजिया देखकर कोई किसी मौलवी की याद आती तो मुफ्ती कभी नहीं कहता कि ताजिया देखना हराम। तवज्जो, अगर ताजिया देखकर किसी मुफ्ती के बाप की याद आती तो कभी फतवा नहीं दिया जाता कि ताजिया देखना हराम। मगर मुफ्ती को ताजिये से प्रॉब्लम इसलिए है कि इधर ताजिया को देखा उधर जमाने को हुसैन याद आया। तवज्जो, इसलिए कि ये 11 महीने तक मुसलमानों को बेवकूफ बनाता रहता है, हर जगह अपने बाप का नारा अपने दादा का नारा, मगर जैसे ही एक महीना मुहर्रम का आता है मुफ्ती परेशान हो जाता है, इसलिए कि 11 महीनों के फतवों को हुसैनी उठाकर कूड़ेदानों में फेंक देते हैं और जिस गली में चले जाओ जिस शहर में चले जाओ जिस चौराहे पर चले जाओ एक ही नारा, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, तो ये लोग परेशान हो जाते हैं, इसलिए कि करबला के बाद कायनात में एक हुसैन ही बचा मेरा मौला सज्जाद, करबला के बाद एक हुसैन ही बचा, उस एक हुसैनी से आज पूरी दुनिया में करोड़ों हुसैनी है। तो जरा सोचना कि 62 हिजरी के बाद जब मुख्तार बिन उबैद सकाफी ने यजीदी नमक हरामों की पिटाई शुरू की, तो 2 लाख समंदरी फौज समंदरों के रास्तों से जिब्राल्टर, स्पेन, यूरोप, हिंदुस्तान और दीगर ममालिक में जाकर पना लिया। तो जरा सोचो जब उस एक हुसैनी से करोड़ों हुसैनी, तो अल्लाह जाने उन 2 लाख यजीदियों से दुनिया में कितने यजीदी होंगे। तो जब हम हुसैन का नारा लगाते हैं, जब हर जगह से या हुसैन का नारा लगता है, तो यजीद की औलादों के पेट में मरोड़ पैदा होता है। ये आपस में मीटिंग करते हैं कि जिसे देखो अली का नारा लगाता है, जिसे देखो हुसैन का नारा लगाता है। हमारे अब्बा यजीद का नाम कोई नहीं लेता, हुरमुला का नाम कोई नहीं लेता, शिमर का नाम कोई नहीं लेता। तो बताइए चला, प्रॉब्लम ताजिए से नहीं, ताजिया को देखा हुसैन याद आया, प्रॉब्लम आलम से नहीं, आलम को देखा अब्बास याद आया, प्रॉब्लम झूले से नहीं, झूले को देखा असगर याद आए, प्रॉब्लम मेहदी से नहीं, मेहदी को देखा कासिम याद आया, प्रॉब्लम सेहरे से नहीं, प्रॉब्लम इस बात से है कि सेहरे को देखा अकबर याद आया। मैंने कहा मेरी जान, याद हमारे बाद भी है, यादगार तुम्हारे बाद भी है। कहा वो कैसे? मैंने कहा सुन, ताजिए को देखा हुसैन याद आया, आलम को देखा अब्बास याद आया, झूले को देखा असगर याद आया, इसी तरह जाकिर नायक को देखा यजीद याद आया, हुरमुला याद आया।
माशाल्लाह सब मिलकर तुझे प्रॉब्लम ताजिए से नहीं, तुझे प्रॉब्लम है कि ताजिए को देखकर हुसैन याद आया, झूले को देखकर असगर याद आया। बस समेट दिया मैंने, 35 मिनट वक्त था मेरे पास, सिर्फ कुल 10 दकीके बचे हैं। अब देखिए, हैं? अब इसे शरारत कह लीजिए या मोहब्बत कह लीजिए, सलावात पढ़िए सब मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कहा नहीं
लब्बैक,
क्या होगा ताजिया उठाकर, क्या होगा अलम उठाकर, मुझे ये बता क्या होगा तरावी पढ़कर। आप मत टेंशन लीजिए, हाँ अगर आजमगढ़ को यजीदियों के लिए आतंकगढ़ ना बना दूं तो फायदा क्या है अली की खिताब का। और तुम परेशान मत हो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, गोली मेरे सीने पर लगेगी अगर चलेगी, और ये सीना अल्हम्दुलिल्लाह लोहे का है, मत घबराना, इसलिए कि अली मुहाफिज है मेरा। मैं बड़े बड़े कटमुल्लाओं से नहीं डरता हूं, तो चिटपुंजियों से क्या डरूंगा। ताजिया उठा के क्या होगा, अलम उठा के क्या होगा, झूला निकाल के क्या होगा। मैंने कहा ये तो हम तुझे तब बताएंगे जब तू मर के कब्र में जाएगा, फरिश्ते बताएंगे क्या होगा। कहा नहीं, क्यों क्यों करते हैं आप? हमने कहा इसलिए कि हमें मोहब्बत है अहले बैत से, हम नमक हराम नहीं है, नमक हलाल है, हमें मोहब्बत है क्या? मोहब्बत तो हम भी करते हैं, हम भी बड़ी मोहब्बत करते हैं अहले बैत से। हमने कहा हा 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 हा, मेरी जान तू बड़ी मोहब्बत करता है, मगर तुझ में और हम में एक ही फर्क है, तू अहले बैत से भी मोहब्बत करता है, हम अहले बैत से ही मोहब्बत करते हैं। तवज्जो है, हम अहले बैत से ही मोहब्बत करते हैं। कहने लगा तो दिल से मोहब्बत कीजिए, दिल से, हम तो दिल से मोहब्बत करते हैं। मैंने कहा काश तेरा सीना हनुमान जी जैसा होता तो चीर कर देख लेता तेरे दिल में क्या है, है? नहीं, हम लोग तो दिल से मोहब्बत करते हैं। मैंने कहा ठीक है, आज मैं भी आजमगढ़ के मुसलमानों से कहता हूं, आज से हम सब दिल से मोहब्बत करेंगे, मगर अहले बैत से पहले अल्लाह से दिल से मोहब्बत करेंगे। तवज्जो, सबसे बड़ी मोहब्बत तो अल्लाह की है ना, तो आज से हम लोग अल्लाह से दिल से मोहब्बत करेंगे। कहा वो कैसे? मैंने कहा सुन, नमाज के माने है दुआ, नमाज के माने दुआ, दुआ करना लुगवी माने नमाज के दुआ है। मैंने कहा ठीक है, अब जब पांच वक्त मुअज्जिन अजान देगा तो मैं अपने घर के बेड में बैठूंगा, तकिए पे हिलाल लगाऊंगा और खूब दुआएं मांगूंगा। हो गई नमाज? बोलो, हो गई नमाज? कहा नहीं, नहीं हुई नमाज। मैंने कहा अच्छा ठीक है, रोजा के माने हैं खुद को रोक लेना, खुद को किसी शय से, किसी चीज से रोक लेना। मैंने कहा जैसे ही माह रमजानुल मुबारक की पहली तारीख आएगी मैं अपने आप को घर में रोक लूंगा और दिन भर समोसे भी खाऊंगा, पकोड़े भी खाऊंगा, जूस भी पीऊंगा, हो गया मेरा रोजा। का कैसा मजाक कर रहे हो, हरगिज नहीं होगा। मैंने कहा अच्छा ठहरो, जकात के माने हैं इजाफा होना, किसी चीज में इजाफा होना। मैंने कहा भी 1,00,000 रुपया मैं बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाऊंगा, हर महीने मेरे अकाउंट में इजाफा होगा। हो गई जकात अदा? कहा नहीं, नहीं हुई। मैंने कहा अच्छा ठहरो, हज के माने हैं इरादा करना। मैंने कहा जैसे जिलहज की तारीख आएगी मैं अपने घर में बैठ के इरादा करूंगा, ना काबे में जाऊंगा ना वीजा लगाऊंगा, बस घर में बैठ के इरादा करूंगा। हो गया हज? का नहीं, हज नहीं हुआ। अब जैसे ही हज का मौसम गुजरा हुज्जाज वापस आए, तवज्जो कीजिएगा, जब गए थे तो मुसलमान थे, जब वापस आए तो हुज्जाज हो गए। अल्लाह जाने आप कहां बैठे हैं, गए थे तो मुसलमान थे, वापस आए तो हुज्जाज हो गए। और जब वापस आए तो हाजियों को इस्तकबाल दिया गया, मैं भी अपने घर से निकला, हॉल में पहुंचा, कहा मेरा भी इस्तकबाल करो, मेरे गले में भी फूलों का माला डालो। कहा अरे वो काबे से आ रहा है, तू अपने घर से आ रहा है। मैंने कहा उससे क्या होता है, इरादा तो किया है ना, तो मैं भी हाजी हूं। कहा नहीं, फकत इरादा करने से नहीं होगा। मैंने कहा तो फिर कैसे होगा? कहा हज करने के लिए काबे में भी जाना होगा, काबे का तवाफ भी करना होगा, सफा और मरवा की सही भी करना होगा, एक पत्थर को चूमना होगा, 3 पत्थर को मारना होगा। तवज्जो, एक पत्थर का, एक हजरे अस्वद का बोसा लेना होगा, 3 शैतानों को पत्थर मारना होगा, सफा और मरवा की सही करना होगा, मकामे इब्राहिम पर नमाज पढ़ना होगा, काबे का तवाफ करना होगा। मैंने कहा चाहिए बता, वक्त घर बैठने से रोजा हो जाएगा? कहा नहीं, भूखे भी रहना होगा, प्यासे भी रहना होगा, सेहरी भी करना होगा, अफ्तार भी करना होगा। मैंने कहा घर बैठे दुआ करने से नमाज हो गई? कहा नहीं, सजदा भी करना होगा, कयाम भी करना होगा, तशहुद भी पढ़ना होगा, सलाम भी करना होगा। मैंने कहा इसी तरह अहले बैत से फकत मोहब्बत का जुबानी दावा करने से कुछ नहीं होगा, ताजिया भी उठाना होगा, आलम भी उठाना।
मोहब्बत को साबित भी करना होगा।
कहने लगा नहीं ये ताजिया राला मर ये मत उठाइए। मैंने कहा तू ही कोई तरीका बता दे फिर। कहा कुरान पढ़कर बख्श दीजिए। हैं इमाम हुसैन को अब बख्शने बकस दीजिए। तवज्जो कीजिएगा बकस दीजिए बख्श दीजिए कुरान पढ़कर। मैंने कहा कैसे। कहा जैसे हमने अपने अब्बा को बख्शा था मरहूम अब्बा को। मैंने कहा भाई कैसे बख्शा तूने। कहा हमने कुरान पढ़ा था और पढ़ के अब्बा मरहूम को बख्श दिया था। मैंने कहा कुरान तूने पढ़ा था तेरे अब्बा ने थोड़ी पढ़ा था। कहा नहीं आप समझे नहीं हमने अपने अब्बा के बदले में पढ़ा था। तवज्जो अब्बा के बदले में पढ़ा और उनको सवाब नजर कर दिया पहुंचा दिया। मैंने कहा ये कैसे हो गया। कहा इसलिए कि मेरे अब्बा मर गए। मैंने कहा तो फिर। कहा आप जब वो मर गए तो वो खुद कुरान नहीं पढ़ सकते। तवज्जो कीजिएगा एक तारीखी जवाब देने वाला हूं। कहा कि अब्बा मर गए तो जब मर गए तो अब वो कुरान नहीं पढ़ सकते। तो एक बात समझ में आ गई आजमगढ़ वालों कि कुरान पढ़कर उसको बख्शा जाता है जो मरने के बाद कुरान ना पढ़ सकता हो। मैंने कहा तू उस हुसैन को क्या बख्शेगा जो नोके नैजा पर भी कुरान। अब बेवकूफ समझता है कि हम पर पाबंदी लगाकर अजादारी बनकर देगा। हैं? धमका रहा है चमका रहा है। अबे धमकाने वाले भी मर गए चमकाने वाले भी मर गए। हैं? सोचता है शब्बीर बारसी पे पाबंदी लगाएंगे तो जिक्र अली बंद हो जाएगी। तुझे मालूम ही नहीं है मनहूस बाप के मनहूस बेटे के शब्बीर बारसी की वजह से जिक्र अली नहीं है जिक्र अली की वजह से शब्बीर बारसी है। जिक्र अली की रौनक से मेरा वजूद है। और हम क्यों ना करें वो अदादारी इसलिए कि ये हमारे निजात का सामान है। कसम खुदा कि हमारे पास कुछ है ही नहीं इसके अलावा। नमाज तुझे निजात दिलाएगी जिस नमाज में फकत ख्याल है दुनिया। एक मौलवी साहब से किसी ने कहा मौलाना मेरे गाड़ी की चाबी खो गई है। कहा दो रिकत नमाज पढ़ चाबी मिल जाएगी। कहा वो कैसे। कहा पढ़ ले पहले फिर समझ में आएगा। जैसे ही नमाज शुरू की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब ख्यालों में खोया हुआ है। कहाँ रखी है चाबी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ड्रॉस के अंदर रखी है चाबी मालिक यौमिद्दीन। लगता है बेड के नीचे रख दी होगी। इय्याका नअबुदु वइय्याका नस्तईन हो सकता है पर्स के अंदर रखी हो। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम अलमारी के ऊपर रखा हो। सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम याद आ गया बेड के ऊपर रखा था। है यह है तेरी नमाजों का आलम। यह नमाज तुझे निजात दिलाएगी। है हम नमाज के मुनकिर नहीं हैं। कोई जाहिल ये ना बाद में कहे कि शब्बीर बारसी नमाज के खिलाफ बोल के गए। जाहिल नमाज का मुनकिर नहीं हूं मैं मगर नमाज पे तकब्बुर भी नहीं है मुझे। इसलिए कि नमाज पे तकब्बुर करना हुसैनियत नहीं इबलीसियत है। तवज्जो करना हाँ इबलीसियत है। अगर फख्र करना है तो हुसैन की मोहब्बत में करना। मैं तुम्हें बताऊं। अच्छा ये बता कोई जितना बड़ा नमाजी हो जाहिल से जाहिल मुसलमान से मेरा सवाल है ये बता कि अगर नमाज यजीद के साथ पढ़ी गई हो या यजीद की हिमायत में पढ़ी गई हो तो क्या वो नमाज कबूल है। तो जाहिल से जाहिल मुसलमान भी होगा तो कहेगा कि नहीं वो नमाज जो यजीद के साथ या यजीद के हिमायत में पढ़ी गई हो वह नमाज कबूल नहीं होगी। मैंने कहा तो यह बता जनाबे हुर ने जिंदगी भर नमाज किसके साथ पढ़ी। तवज्जो बहुत बड़ा जवाब देने लगा हूं। जिंदगी भर यजीद के साथ यजीद की हिमायत में नमाज पढ़ी, यहां तक के शबे आशूर भी यजीद के खेमे में नमाज पढ़ी, और सुबह आशूर की नमाज पढ़ने के बाद हुसैन के कदमों में आया और जोहर से पहले शहीद हो गया, तो हर तमाम जिंदगी की नमाज यजीद के साथ पढ़ी। मगर मैंने कहा ये बता, हुर गया कहा? का हुर जन्नत गया? मैंने कहा इंसाफ से बता, हुर को जन्नत क्या चीज ले गई? हुर को जन्नत नमाज ले गई या इश्क़े हुसैन ले गया? हुर को जन्नत क्या चीज ले गई? अच्छा, हुर तो फिर भी मुसलमान था। करबला में 72 शहदा में तो 2 ईसाई भी शामिल हैं, एक जॉन और दूसरा अब्दुल्ला इब्ने वहबे कलबी। इन लोगों ने कौन सी नमाज पढ़ी? तवज्जो, कौन सी नमाज पढ़ी? देखा मुझे कोई तारीख के जॉन को भेजने से पहले हुसैन ने कहा हो कि जॉन पहले मेरे नाना का कलमा पढ़ ले। देखा मुझे कोई तारीख के वहबे कलबी को हुसैन ने कहा हो कि पहले मुसलमान हो जाओ फिर इजाजत दूंगा। तवज्जो, तो ईसाई भी गया हुसैन की तरफ से शहीद हुआ। वजह क्या है? मुझे नबी की हदीस याद आ गई कि नबी ने फरमाया, मसलो अहलो बैती कमा सली सफी नतुल नू मन रका वहा नजा वमन तखल्लफा फरका वहावा। मेरे अहले बैत की मिसाल नू की कश्ती की मानिद है, मन रका वहा नजा, जो इसमें सवार हो गया, शिया नहीं सुन्नी नहीं वहाबी नहीं बरेलवी नहीं, जो सवार हो गया वो निजात पा गया। वमन तखल्लफा गर्का वहावा, और जो दूर रहा वो गर्क हो गया, डूब गया। पता ये चला करबला से कि अगर ईसाई भी अहले बैत की कश्ती में आ जाए तो निजात पा जाएगा, और मौलवी भी अहले बैत से दूर रहे तो उन्हें मुझे जहन्नम में जाएगा।
यह मेयार मेयार अहले बैत हैं। अच्छा पढ़ूं या खत्म कर दूं? हाँ, मैं जबरदस्ती का खतीब नहीं हूं, जबरदस्ती नहीं पढ़ता। मुझे मालूम है जब हर आदमी नबी से सुनकर खुश नहीं हुआ तो मुझसे सुनकर क्या खुश होगा? तवज्जो। और आज तो मुझे अच्छा लग रहा है कि धूप सर पर है, दोपहर की रोशनी है, सूरज सर पर है और जिक्र अली हो रहा है। यही तो गदीर की सुन्नत है, गदीर में तो यही हुआ था। है चिलचिलाती हुई धूप, सूरज सर पर, टपकते हुए पसीने और रेगजार की गर्मी, और नबी अली की विलायत का ऐलान कर रहे हैं। मैंने कहा आखा आप मालिक जन्नत हैं, जरा जन्नत की ठंडी ठंडी हवाएं चला दीजिए। आखा जरा कौसर और सरसबील की नहरें बहा दीजिए। आखा आपके एहतराम में दरख्त झुक जाते हैं, जरा दरख्तों का साया लगवा दीजिए। ये क्या बात है आखा? चिलचिलाती हुई धूप, सूरज सर पर, टपकते हुए पसीने, गर्म सेहरा और अली की विलायत का ऐलान कर रहे हैं। आवाज आई कि तू मुनाफिकों का मिजाज नहीं जानता, अगर मैं चाहता तो ठंडी हवा भी चला सकता था, कौसर की नहरें भी बहा सकता था, दरख्तों का साया भी लगा सकता था, मगर होता क्या? क्या होता आका? کہا بعد میں منافق کہتا وہ تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اس لیے ہم سو گئے, توجہ, اس لیے ہم سو گئے. اللہ نے کہا دیکھو, اللہ نے کہا دیکھو ہم تمہیں نبی کے ساتھ رونے تو دیں گے مگر سونے نہیں دیں گے. علی کے ذکر کا مزہ انہی موسموں میں آتا ہے, ہمیں جنت کی لالچ دلاتا ہے. اچھا ہوا نبی نے نہیں کہا کہ جنت کے سردار مولوی ہوں گے, اللہ جانے کون کون لوگ جنتی ہو جاتے ہیں. نبی نے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, جنت کا سردار میرے نوسے ہیں. تو کیا سمجھتا ہے بے, یا نبی سلام علی کا پڑھ کے جنت چلا جائے گا؟ تیرے باپ کی جنت ہے. جنت کے سردار حسنین ہیں, جب تک نواسوں کو سلام نہ کر لے نانا تیرے سلام کا جواب نہیں دیں گے. ہمیں جنت کی لالچ دلاتا ہے. جب نبی نے سلمان فارسی کو کہا مجمع سے خطاب کر کے کہ سلمان جنت جانے کی آرزو نہیں رکھتا, جنت متمنی ہے کہ کب سلمان کے قدم جنت میں پڑے. توجہ, سلمان جنت جانے کی آرزو نہیں رکھتا, جنت کو آرزو ہے کہ کب سلمان جنت میں داخل ہو. اب جب یہ حدیث بیان کی سلمان خوشی کے مارے مچلنے لگے. دل کا حال کسے سنائے, آئے سیدہ کی چوکھٹ پر, فضا کو آواز دی. فضا نے کہا کیا ہوا سلمان؟ کہا دیکھو آج نبی نے کتنا بڑا اعلان کیا. کہا کیا کہا ہے نبی نے؟ کہا نبی نے کہا ہے کہ سلمان جنت جانے کی تمنا نہیں رکھتا, جنت کو تمنا ہے کہ کب سلمان جنت میں آئے. فضا نے کہا ایسی باتیں مجھے نہ سنایا کرو. سلمان نے کہا فضا ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہا اس لیے سلمان کہ مجھے جنت کی باتیں مت سنا, اس لیے کہ میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں.
یا نثار حسین
یا, ہمیں جنت کی لالچ دلوا رہا ہے. وہی جنت نا, تجھے معلوم ہی نہیں ہم مزاج کون سا رکھتے ہیں. ہم بکلول مزاج نہیں ہیں, ہم بہلول مزاج ہیں. اللہ اکبر, کچھ لوگ کھانا کھاتے ہیں آپ جملوں کو کھا جاتے ہیں. ہم بکلول مزاج نہیں ہیں, بہلول مزاج ہیں. ہمارے لیے جنت بہت مہنگی نہیں ہے. ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی. ملنگی وہ نہیں ہے جو آج کل چرسی پی رہے ہیں چلم خور, ان کو ملنگ نہیں کہتے, انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے ملنگیت کیا ہے, سمجھے. ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی, بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی. توجہ, بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی. کبھی بہلول نے بیچی, کبھی ہر نے خریدی ہے, خداوندہ تیری جنت بڑی سستی نظر آئی. خداوندہ وہ جنت کہ جس کا وعدہ سیدہ نے ہم سے کیا ہے, یہ میری سیدہ کا وعدہ ہے کہ دو آنسو بہا دو میرے حسین کے نام پر, میں جنت لے جاؤں گی. توجہ, پریشان ہو گیا مولوی اور غیر تو غیر اب اپنے بیچ میں بھی یہ پوائزن پھیلنے لگا کہ آنسوؤں کے بدلے ادا
ताबेदारी के बदले फकत जन्नत कैसे मिलेगी। देख फातिमा का वादा है, तवज्जो कारे, आप कैसे फकत दो आंसू बहाकर, फकत अलम उठाकर, फकत ताजिया उठाकर आप कैसे जन्नत चले जाइएगा। और ये वही मौलवी एतराज करता है जो ये कहता है कि ये कैसे हो गया कि आग झपकी, आग उठी, नबी जमीन से आसमान पर पहुंच गए, सातों आसमान पर पहुंच गए, अर्शे इलाही पर भी पहुंच गए, जन्नत और कौसर की सैर भी कर ली, तमाम नबियों की इमामत भी फरमा ली, ये कैसे हो सकता है। जंजीर हिलती रही, तकिया गर्म रहा, बिस्तर नर्म रहा, और नबी जमीन से आसमान पर गए, आसमान से वापस आ गए। अरे जाहिल जाके कुरान पढ़, अल्लाह सूरह बनी इसराइल में फरमा रहा है, सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिहि लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा लज़ी बारकना हौलहू लिनुरीहु मिन आयातिना। पाक है वो ज़ात जो ले गई रातों रात अपने आप को मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक। मैंने कहा कुरान पढ़, नबी ने नहीं कहा कि मैं गया, अल्लाह कह रहा है मैं ले गया, तवज्जो, अल्लाह कह रहा है मैं ले गया। मैंने कहा इसी तरह हम आजादार नहीं कहते कि हम जन्नत जाएंगे, फातिमा ने कहा है मैं ले जाऊंगी।
सैयदा ने कहा है, है? एक सलावत पढ़े सब मिलकर बुलंद तरी, सैयदा ने वादा किया है, फातिमा ने वादा किया, मेरे लाल हुसैन मैं उस वक्त तक जन्नत नहीं जाऊंगी जब तक तेरा एक एक अदादार जन्नत ना चला जाए। समेट दिया मैंने, बस 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 समेट दिया। मैंने कहा हाँ हाँ, आखिरी बात, हम जन्नत नहीं जा सकते। अच्छा, मैंने कहा आधी ने पूरी बात सुन। का वो क्या? मैंने कहा ये भी सुन, कैसे नहीं जा सकते। का कैसे? मैंने कहा हम जन्नत नहीं जा सकते, वैसे ही नहीं जा सकते जैसे आसमान से दुम्बा नहीं आ सकता। अल्लाह जाने आप कहां बैठे, लग रहा है आपको गर्मी लग रही है, मैं समेट देता हूं। हाँ, वरना फिर बोलिए, कसम खुदा की मौसमों को हराने की ताकत फकत अली वालों को है। हाँ हौसला रखिए, हौसला, खत्म कर रहा हूं मैं। मैंने कहा हम जन्नत नहीं जा सकते, वैसे ही हम जन्नत नहीं जा सकते जैसे आसमान से दुम्बा नहीं आ सकता। मैंने कहा हम जन्नत नहीं जा सकते। कहा कैसे? मैंने कहा हम जन्नत वैसे ही नहीं जा सकते जैसे हवा में कालीन नहीं उड़ सकता। मैंने कहा हम जन्नत नहीं जा सकते। कहा कैसे? मैंने कहा वैसे ही हम जन्नत नहीं जा सकते जैसे आग पर बैठकर अल्लाह की इबादत नहीं हो सकती। मैंने कहा हम जन्नत नहीं जा सकते। कहा कैसे नहीं जा सकते? मैंने कहा वैसे ही नहीं जा सकते जैसे मुर्दा जिंदा नहीं हो सकता है। मैंने कहा हम जन्नत नहीं जा सकते, वैसे ही नहीं जा सकते जैसे मछली के पेट में तस्बीह नहीं पढ़ी जा सकती है। अब मौलवी घबरा के कहने लगा कि नहीं 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 नहीं, आसमान से दुम्बा आ सकता है अगर बुलाने वाला इब्राहिम हो, हवा में कालीन उड़ सकता है अगर उड़ाने वाला सलमान हो, अरे आग पर इबादत हो सकती है अगर करने वाला इब्राहिम हो, मुर्दा जिंदा हो सकता है अगर जिंदा करने वाला ईसा हो, दरिया में रास्ते हो सकते हैं अगर रास्ता बनाने वाला मूसा हो, मछली के पेट में इबादत हो सकती है अगर करने वाला यूनुस नबी हो। मैंने कहा इसी हम गुनाहगार भी जन्नत जा सकते हैं अगर ले जाने वाली फातिमा हो। माशाल्लाह, बोलो सलामत रखे। हम गुनाहगार भी जा सकते हैं अगर ले जाने वाली फातिमा हो। और कसम खुदा की इस मिंबर पर बैठकर कह रहा हूं, अगर किसी को शक है इस मजमे में कि फातिमा नहीं ले जा सकती, तो अल्लाह करे वो जन्नत की खुशबू भी ना सूंघे। इसलिए कि यहां बात हमारी नहीं है, यहां बात इख्तियार फातिमा की है। वो फातिमा कि जब महशर के मैदान में आएंगी तो आवाज कुदरत आएगी, ए अहले महशर अपनी निगाहें झुका लो, इसलिए कि फातिमा की सवारी आ रही है। क्या लेकर आएंगी फातिमा? एक खून भरा कुर्ता, एक जला हुआ झूला, एक फटी हुई चादर। आके अर्श के तख्ते पर रख के फातिमा कहेंगी, इंसाफ कर खुदाया, आज इंसाफ कर के क्या जुर्म था मेरे हुसैन का, किस जुर्म में मेरे हुसैन को ज़िबा किया गया, क्या कसूर था मेरे अकबर का कि उसके सीने पर बर्छी मारी गई, क्या कसूर था मेरा कासिम का कि उसे तकसीम कर दिया गया, क्या कसूर था मेरे असगर का कि उसके गले पे थी। हाजादारो, ये फातिमा का वादा है, हम वादा करते हैं, हमें यकीन है सैयदा आप यहाँ आई होंगी, हमारा आपसे वादा है, हम मरते दम तक आपके लाल का गम मनाते रहेंगे। अगर मुहर्रम आया अपने बच्चों के भी जनाजे पड़े होंगे तो हम पहले आपके बच्चों का ताबूत। हाजादारो, क्यों उठाते हो ये ताबूत? पूछा जाता है ना, एक मजलिस हो गई, दो मजलिस हो गई, ये मुसलसल एक के बाद दूसरी मजलिस, दूसरे के बाद तीसरी मजलिस, वजह क्या है? अरे तुम नहीं जानते, मजलिस उसकी है जिसने एक जनाजा उठाने के बाद दूसरा जनाजा, तीसरा जनाजा, 71 जनाजे उठाए, मगर उस गरीब का जनाजा उठाने वाला कोई नहीं था। सुन सकोगे दादारो? शामे गरीबा हो गई, लुट गया नबी का घर। जोहेर इब्ने कैन की बीवी को खबर मिली रास्ते में कि शहदाए करबला को शहीद कर दिया गया। जोहेर की बीवी ने अपने गुलाम को बुलाया, एक कफन दिया और कहा, जा ये कफन लेकर करबला जा। गुलाम ने कहा, एक कफन? कहा, इसलिए कि हुसैन तो नबी के नवासे हैं, किसी ना किसी ने हुसैन को कफन दे दिया होगा, किसी ना किसी ने अब्बास को कफन उड़ा दिया होगा, किसी ना किसी ने तो अकबर को कफन उड़ा दिया होगा, मगर मेरे जोहेर का कोई अपना नहीं है, मेरे जोहेर के लिए कफन ले जा। हाजादारो, गुलाम गया तो करबला में, मगर वही कफन लेकर वापस आया। जोहेर की बीवी ने कहा, क्या बात है, कफन लेकर वापस क्यों आ गया? का इसलिए शहजादी के वहां एक कफन नहीं, 72 कफन चाहिए। अरे कहीं हुसैन का जनाजा, कहीं अकबर, कहीं कासिम, कहीं आनो मोहम्मद। हाँ दादा, रो लो, अब अगले साल वही रोएगा जो जिंदा रहेगा, बचे जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। जरा देखो ये रौनक है, एक बेगोरो कफन का ताबूत उठेगा, कल यही आना, यहाँ पर ये रौनक नजर नहीं आएगी। सुन सकोगे अदादारो? शामे गरीबा जब आया ना, तो जुलजना के पास कुछ नैजा सवार बढ़े, नैजा लेकर कुछ तीरबाज बढ़े, तीर लेकर, चाहते थे जुलजना को कत्ल कर दे। पिसरे साध लानती आया और आकर कहा, तुम लोग क्या कर रहे हो? इस घोड़े पर नैजा मत चलाओ, इस घोड़े को तीर मत मारो, इस घोड़े को अजियत मत दो। तो सिपाहियों ने कहा, वजह क्या है? कहा, इसलिए कि ये नबी की सवारी है। मैं कहूंगा जालिम, अरे जिस घोड़े पर नबी सवार होते थे वो घोड़ा याद रहा, और जो दो रिसालत का शह सवार। बस खत्म कर दिया मैंने, सुनोगे? करबला, करबला शामे गरीब आ गई ना, लूट लिया मुसलमानों ने नबी के नवासे को,
जिस तरह एक भेड़िए अपने शिकार को लूटते हैं ना, इन इंसान नुमा भेड़ियों ने हुसैन को लूट लिया। अरे अकेले के जनाजे पर 22,000 घोड़े, कोई आया हुसैन का अमामा छीन कर ले गया, कोई आया हुसैन का कुर्ता उतार के ले गया, कोई आया हुसैन का कमरबंद लूट कर ले गया। अरे एक जालिम की नजर हुसैन के अंगूठी पर पड़ी, वो आया चाहता था उंगलियों से अंगूठी उतारे। हुसैन के उंगलियों से जब अंगूठी नहीं उतरी, नेआम से एक मरतबा छुरी निकाला। अरे प्यासे के उंगलियों पर हुसैन के हथेली पर उंगलियां जुदा। बस बस हौसला हौसला हौसला, या तो तू मर जाएगा या तो मैं मर जाऊंगा। बस दो मिनट दे दो पुरसा, आज सैयदा को भी पुरसा दे दो, आज जैनब को भी पुरसा दे दो, आज रबाब को भी पुरसा दे दो। जैनब ने अपने बच्चों का पुरसा जब तक मदीने नहीं गई कबूल नहीं किया। आ गई शामे गरीबा, कटे हुए सरों को नैदों पर उठाया गया, जिस गले को नबी चूमते थे उस पे नैदा। पिसरे साद ने खुली मलून से कहा, जरा गिन तो सही कितने सर है। लातनते लानती ने गिन के बताया 71 सर है। एक मर्तबा पिसरे साध ने कहा, मैंने तो सुना है कि 72 लोग कत्ल हुए, तो ये 72वां सर किसका है? सुन सकोगी मेरी माओ मेरी बहनों, खुदा तुम्हारी गोदियों को आबाद रखे। कहा 72वां सर किसका है? कहा 72वां सर शिरखार असगर का है। हुसैन के 6 महीने के बच्चे का है। हुसैन ने उसे करबला में किसी नर्म जमीन पर दफना दिया है। कभी सोचा तसव्वुर में कि हुसैन ने फकत असगर का जनाजा क्यों दफनाया? इसलिए कि हुसैन को पता था ना कि शामे गरीबा में लाशों के ऊपर से घोड़े दौड़ाए जाएंगे। अरे अब्बास बर्दाश्त कर लेगा, अरे अकबर बर्दाश्त कर लेगा, अरे मेरा असगर। असगर को हुसैन ने दफना दिया है। अल्लाह किसी बाप को या किसी माँ को वो दिन ना दिखाए जो रबाब ने देखा। एक मर्तबा जालिम कहने लगा, एक काम करो, अपने साथ कुछ नैजा सवारों को ले जाओ, जमीन पर नैजा मारो, असगर का जनाजा जमीन से निकालो, मेरे कलेजे में ताकत नहीं है, बस कयामत होने वाली है। अरे कुछ नैजा सवार बड़े जमीन पर नैजा मारते हुए चले एक मकाम पर। अब जो एक जालिम ने नैजा मारा, नैजा तो निकला मगर नैजे में फंस कर असगर का जनाजा, अरे बच्चे का लाशा। बस कयामत, मेरी माँ बहनों कलेजे में हाथ रख कर सुनना वरना तू मर जाएगी। अरे असगर का जनाजा नैजे की नोक पर चुभा हुआ जनाजा निकाला गया। एक जालिम ने सर पकड़ा, एक जालिम ने बच्चे का बदन पकड़ा, एक जालिम ने छुरी निकाला। अरे असगर के गले पर, अरे नन्हे गले पर रबाब ने आवाज दी, अरे मेरा असगर, अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा।